नमस्कार भारत, तारीख 31 जुलाई दिन रविवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। सऊदी अरब और कुवैत में भूखे प्यासे फंसे सैकड़ों भारतीय मजदूर।
हमको 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, खाने का भी 10 दिन से खाना बंद है और अकामा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, जो घर जाना चाहता है उसको घर नहीं भेज रहे हैं।
मामला सुलझाने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जाएंगे सऊदी अरब। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों ने अपनी हड़ताल 6 दिन और बढ़ाई। बात होगी बाल मजदूरी कानून में हुए संशोधन की भी, इससे बच्चों का शोषण कम होगा या बढ़ेगा।
ये रूल पास होने से एक तो हमें लेबर ज्यादा मिलेगी और हमारे जो पैसे हैं उनमें भी बचत होगी और काम के भी थोड़ा सा अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी।
अब जो एक लेबर है मेरे पास 300 रुपए लेती है, बच्चा तो सो ही लेगा।
खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सऊदी अरब के जेद्दा शहर में फंसे भारतीयों के मामले को सुलझाने के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह वहां जाएंगे। रिपोर्टों के मुताबिक जेद्दा में करीब 800 भारतीय फंसे हुए हैं और बीते कुछ दिन से उन्हें खाना भी नहीं मिला है। हालांकि विदेश मंत्री का कहना है कि सऊदी अरब में खाने की समस्या से जूझने वाले श्रमिकों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। ट्विटर पर इस मामले को उठाए जाने के बाद सुषमा ने जानकारी दी कि उन्होंने सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से फंसे लोगों को मुफ्त खाना देने को कहा है। उन्होंने सऊदी अरब में रहने वाले 30 लाख भारतीयों से भी मदद की अपील की है। सीरिया के संघर्षग्रस्त अलेपो शहर से मिली रिपोर्टों के मुताबिक रूस और सीरिया की ओर से तैयार कॉरिडोर का इस्तेमाल बेहद कम संख्या में आम लोगों और लड़ाकों ने किया है। मानवीय आधार पर तैयार कॉरिडोर का मकसद फंसे लोगों को बाहर निकालना है। सीरिया के सरकारी टीवी ने महिलाओं और बच्चों के बसों में सवार होने की तस्वीरें प्रसारित की हैं। उनके साथ हथियारबंद लोग भी हैं जो सरकारी सेना के सामने समर्पण करने वाले लड़ाके मालूम होते हैं। रूस के मुताबिक 169 आम लोगों ने शहर छोड़ दिया है, हालांकि वहाँ अब भी 3 लाख लोग फंसे हुए हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक हॉट बेयर बैलून में आग लगने की वजह से इसमें सवार सभी 16 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन से करीब 50 किलोमीटर दूर हुआ। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की वजह की जानकारी नहीं हो सकी है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने गुब्बारे को बिजली के तारों से टकराते देखा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसे की जांच करने वाले नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के सलाहकार एरिक ग्रोसफ ने कहा, ये हमारे काम करने के लिए मुश्किल जगह होगी। हमें स्थानीय अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। शेरिफ, पब्लिक सेफ्टी विभाग और दूसरे विभाग हमारी मदद कर रहे हैं। हमने FBI की टीम से भी मदद मांगी है। ये थे एरिक ग्रोसेफ के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सऊदी अरब की अगुवाई वाली सेना का कहना है कि यमन में उसके हवाई हमले में दर्जनों हूती विद्रोही मारे गए हैं। सेना के मुताबिक ये कार्रवाई हूती विद्रोहियों के यमन से लगी सऊदी अरब की सीमा में दाखिल होने की कोशिश के बाद की गई। सेना के मुताबिक सऊदी शहर नजरान के पास हुए संघर्ष में 7 सऊदी सैनिक मारे गए हैं, इनमें से एक अधिकारी शामिल है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप अर्दोगान ने कहा है कि वो देश की खुफिया एजेंसी और सेना प्रमुख को सीधे अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। तख्ता पलट की हालिया नाकाम कोशिश के बाद राष्ट्रपति ये कदम उठाना चाहते हैं। BBC समाचार।
BBC की हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। कार्यक्रम में आज बात सबसे पहले उन सैकड़ों भारतीय मजदूरों की जो बेहतर जिंदगी और बेहतर आमदनी का सपना लेकर सऊदी अरब गए थे, लेकिन अब वहां भूखे प्यासे फंसे हैं। महीनों से वेतन नहीं मिला है और जिन कंपनियों में काम करते थे उनका भी शायद अब अता पता नहीं है, खाने तक के लाले पड़े हैं। इन लोगों के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय को तब पता चला जब राजस्थान के चूरू जिले के इमरान खोकर ने इस बारे में ट्वीट किया। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह मामले को सुलझाने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि उन्होंने भारतीय दूतावास से कहा है कि बेरोजगार भारतीयों तक खाना पहुंचाया जाए। सऊदी शहर जेद्दा में ये लोग किस हाल में जी रहे हैं, यही जानने के लिए हमारे साथी सुशीला सिंह ने बात की वहाँ फंसे कामगार इकबाल खान से।
मेरा नाम इकबाल खान है, मैं भी जद्दा में हूँ सऊदी अरबिया में। मैं यहाँ हाउसकीपिंग का काम करता हूँ जी। होटल नहीं है, के कंपनी की रईस है, एकोमोडेशन है, उसमें काम करता हूँ। सऊदी अरब कंपनी है मेरी।
अच्छा, तो क्या परेशानी आ रही है?
परेशानी पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने हमारी ये बात आप लोगों तक पहुँचा रहे हो। और दूसरी बात, इधर हमको 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, खाने का भी 10 दिन से खाना बंद है, और कामा रिन्यूअल नहीं हो रहा है। जो घर जाना चाहता है उसको घर नहीं भेज रहे हैं, और जो आदमी दूसरी कंपनी पहले तनाजुल नहीं दे रहे थे जाने के लिए, और बहुत जैसे बंदे हैं जो अपना कामा पैसा भर के अभी तक उनको कामा रिस्यू नहीं किया है, और पीने के लिए पानी भी नहीं है। जो नहाने वाला वो पानी हम लोग सब पी रहे हैं, और आज हम इंडिया की एम्बेसी आई है, वो कुछ खाना देखी गई है। 7 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही है कंपनी, और खाना दे रही थी पहले तो चल रहा था, अभी खाना 10 दिन से बंद है।
आपने क्या वहाँ से वापस लौटने का नहीं सोचा अभी?
अभी हम लोग सोचे लौटने, लेकिन कैसे लौटे, इधर कंपनी की ऑफिस भी नहीं खुल रही है।
तो कंपनी वालों का क्या कहना है?
कंपनी वाले अभी कोई है नहीं, मुदीर सब पता नहीं किधर भागे, कोई भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं, किसको बताए हम लोग। अगर हम एम्बेसी, इंडिया वाले एम्बेसी में बता रहे हैं हम लोग, तो वो लोग अभी खाने का अरेंज किया है, और कंपनी में कोई ऑफिस भी नहीं खुली हुई है, कोई मुदीर भी नहीं है, किसको बताए हम लोग। बस हम लोग जैसे वैसे करके बस गुजारा कर रहे थे, अभी आज हम इंडिया की एम्बेसी ही वो कुछ देखी गई खाने के लिए।
गुजारा कैसे चल रहा था आप लोगों का?
गुजारा ऐसे जैसे कोई किसी दोस्त के पास खा रहा था, कोई बाहर जाके किसी दोस्त के से कुछ पैसे उधार लेके आ रहा था, वो भी कितने दिन तक देंगे, 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, अब 10 दिन से खाना बंद है बिल्कुल, और पैसा है नहीं, 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, पैसा है नहीं हमारे पास।
तो ऐसे कितने लोग हैं आपके जानने वाले जो इस परेशानी को झेल रहे हैं?
इधर जद्दा जद्दा के अंदर कम से कम 800-900 बंदे हैं अपने इंडिया की।
और ये लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं?
ज्यादातर ये कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग लाइन का।
अच्छा, कंस्ट्रक्शन के काम में है ज्यादातर?
जी जी जी।
तो अब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गए होंगे वहाँ पर, तो आपके वापस
कॉन्ट्रैक्ट में गए हम लोग।
हाँ, तो आपका अभी वापस कितने साल बाद आना है आप लोगों को?
अभी मेरे को 28 महीना 29 महीना हो गए है, और मैंने कामा बनाया अपना पैसा दे के, तो वो पैसा भी अभी बहुत जैसे बंदे उनका पैसा नहीं है, वो पैसा भी कंपनी के अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। यहाँ एक रेजिडेंस परमिट होता है जिसको कामा बोलते हैं, उसका बनाने के लिए हम लोगों ने किसी ने 4200 रियाल भरा है, किसी ने 3500 रियाल भरा है, वो भी अभी तक नहीं मिला, 8-9 महीने हुए। और कोई आदमी घर आने के लिए यानी रिजर्व जो अकामा बनाया उसका पैसा है, वो भी अभी तक नहीं है, वो भी 2 महीने का बनाया, वो भी खत्म एक्सपायर हो गए।
तो आपने ये जो राजस्थान के चूरू में इमरान रहते हैं, इनसे कैसे संपर्क किया?
इमरान ये तो सोशल से संपर्क किया, मेरे जान बचाने वाला है, मेरे नजदीक का है, चूरू का ही मैं हूँ।
जी, आपने उनको अपनी परेशानी बताई?
जी हाँ जी, उनको बताया मैंने परेशानी पूरी, और उनको वीडियो भेजा मैंने जो यहाँ दिक्कतें थी उन सब की।
तो उनसे आपने किस तरह से मदद मांगी?
उनसे अभी आपसे बोल रहे हैं, उनको ऐसे ही बोला था कि आप हमारी मदद करो, आप मीडिया तक पहुँचाओ ताकि न्यूज दिखाए। अभी पाकिस्तान में पूरे चैनलों में चल रहा है, इंडिया का एक चैनल भी नहीं दिखा रहा इस न्यूज को, हम लोग यानी 8 महीने से परेशान है
जी। अब जब जो भारत की विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, और उन्होंने बोला है कि खाना भिजवाया जा रहा है, जैसे कि आपने बोला कि अब एम्बेसी वालों ने आपसे संपर्क भी साधा है, तो अब
बिल्कुल जी, अभी खाने का तो ये 10 दिन का ये लोग देखे गए, बोलता 10 दिन तक आप खाओ, 10 दिन बाद हम आपका कुछ करते हैं। अभी देखो 10 दिन तो हम लोग कैसे भी चलाएंगे, काम चलेगा, अभी 10 दिन के बाद में देखो क्या होता है। सुषमा स्वराज जी ने बिल्कुल बोला, मैंने भी न्यूज पढ़ा है, उसमें ये आया है कि मैं अभी वीके सिंह जी को यहाँ सऊदी अरबिया भेजेंगे, तो देखो अभी आगे क्या होता है। यहाँ गवर्नमेंट भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सऊदी और जो कंपनी है उनका तो कोई मुदीर यानी जो रिस्पॉन्सर है वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, कोई चीज के बारे में कुछ नहीं बता रहा। वो तो
ये थे सऊदी अरब के शहर जेद्दा से इकबाल खान, बता रहे थे कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कहना है कि सऊदी अरब और कुवैत में बहुत सारे भारतीयों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं, जिन कंपनियों में वो काम करते थे उन्हें बंद कर दिया गया, और कामगारों का बकाया वेतन भी उन्हें नहीं दिया गया, इसीलिए इन लोगों को खाने तक का संकट झेलना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा कई खाड़ी देशों में राजनीतिक उथल पुथल के कारण भी कुछ कंपनियां बंद हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाड़ी देशों सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों में 60 लाख भारतीय काम करते हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और रुख करते हैं उधर गुजरात का, जहां पिछले दिनों ऊना तालुका में पशुओं की मरे हुए पशुओं की खाल उतारने का काम करने वाले दलित युवाओं की सरेआम पिटाई से उनके समुदाय में लगातार रोष बना हुआ है। इसी सिलसिले में आज दलित कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में अपना एक सम्मेलन बुलाया है। इन लोगों का कहना है कि वो दलित समुदाय को मरे हुए पशु उठाने का काम छोड़ने और दूसरा अन्य विकल्प ढूंढने को कहेंगे और अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की अहमदाबाद में स्थानीय पत्रकार अंकुर जैन से और इस सम्मेलन के बारे में पूछा।
अशोक जी, आज अहमदाबाद में दोपहर को दलित समाज की ओर से एक महासम्मेलन का आयोजन हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि सम्मेलन में दलित समाज के जो प्रतिनिधि हैं, और ये कोई वो नेता नहीं है जो इससे पहले कोई राजनीतिक नेता नहीं है, ये सभी वो एक्टिविस्ट कार्यकर्ता है दलित समाज के जो इस आंदोलन से, उन सभी ने एक महासम्मेलन का आयोजन किया जिसमें ये सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे कि दलित गुजरात में जो दलित समाज है वो सरकार से क्या चाहता है।
इन लोगों की मांग क्या है, सरकार से वो क्या चाहते हैं?
सरकार से ये जो हमें जानकारी मिली है ये कुछ 5 मांगे रखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली मांग स्वाभाविक है कि समानता की मांग है कि इन्हें समाज में इनके इनके प्रोफेशन को और इन्हें समानता का दर्जा दिया जाए और जिसके लिए सरकार काम करे। इसमें एक मांग ये भी है कि सरकार जो स्मार्ट सिटीज प्लान कर रही है गुजरात में, उन स्मार्ट सिटीज में ये कंपलसरी किया जाए कि दलितों को पॉश इलाके जो हैं, जो नए इलाके हैं, जो वहाँ उनको घर मुहैया कराया जाए सरकार की ओर से, कि सरकार की ओर से देखा जाए कि इन्हें घर शहर से दूर या अलग कॉलोनियों में ना लेना पड़े। तो इसी तरह की मांगे हैं, जिसमें ये भी मांग है कि सरकार जो ये मैला उठाने का या मरे हुए पशु उठाने का जो काम है उसमें अन्य जाति के लोगों को भी प्रेफरेंस दे।
अंकुर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बात हुई होगी इसके आयोजकों से, कितने लोगों के आने की उम्मीद कर रहे हैं वो अपने इस महासम्मेलन में?
मेरी इस बारे में दलित कार्यकर्ताओं से बात हुई और वो मान रहे हैं कि गुजरात के अलग अलग शहरों से करीबन 10,000 से ज्यादा लोग इस सम्मेलन में शरीक हो सकते हैं।
बनासकांठा में पिछले दिनों एक दलित कार्यकर्ता ने कहा था कि बड़ी संख्या में लोग धर्मांतरण के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये भी कुछ मुद्दा हो सकता है?
मुश्किल है जी कहना, क्योंकि अभी तक कोई दलित नेता ने स्टेज से सम्मेलन के दौरान खुले तौर पर धर्मांतरण की बात नहीं की है, समानता की बात जरूर की है। बनासकांठा के अलावा धर्मांतरण की खबर और तो कहीं से नहीं आई है। हमने इस बारे में बनासकांठा में लोगों से बात की थी और वहाँ के नेता भी इस सम्मेलन में शरीक होंगे। अब देखना होगा आज सम्मेलन में क्या समाज ये बात करता है कि अगर उन्हें समानता का दर्जा नहीं दिया तो वो जो हिंदू धर्म है या हिंदू सिस्टम है कास्ट, उसमें नहीं रह के बुद्धिज्म को अपना लेंगे।
अहमदाबाद में दलितों का सम्मेलन, जानकारी दे रहे थे वहां से स्थानीय पत्रकार अंकुर जैन। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बाढ़ प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य असम का दौरा किया और राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। एक हफ्ते से जारी बाढ़ के कारण राज्य के 28 जिलों में 36,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि इससे मरने वालों की संख्या अब तक 26 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश और सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा।
असम में आई भीषण बाढ़ से भारी जानमाल की तबाही के बाद अब भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार के आपदा विभाग की एक ताजा रिपोर्ट में आज भी करीब 2,50,000 बेघर हुए लोग राहत शिविरों में है। 3,000 के आसपास गाँव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की इस त्रासदी को देखते हुए कई प्रमुख संगठन इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। इस बीच बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने असम आए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
मुझे जानकारी दी गई है कि इस बार बाढ़ के कारण लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई है एक सप्ताह के अंदर, 7 दिनों के अंदर 28 से अधिक जिले प्रभावित हैं, 36-37 लाख जनता प्रभावित है। असम की राज्य सरकार ने जो विक्टिम्स हैं यानी जिनकी जाने गई हैं उनके परिवार के लोगों को तत्काल 4,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई है।
बाढ़ के पानी में डूबने से कल राज्य में और 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोगों में एक व्यक्ति निचले असम के बरपेटा जिले का बताया गया है। बरपेटा जिले के डीसी अश्विन कुमार ने बीबीसी से कहा,
बारपेटा जिला में अभी 4.5 लाख लोग अफेक्टेड हैं फ्लड से, उसमें से 410 गांव हैं जिसमें पानी अंदर है और लोग काफी मतलब पानी की वजह से परेशान भी हैं, जिसमें से काफी फैमिली जो है वो मतलब अपनी घरों से उठ के बाहर की साइड आए हैं। डिस्ट्रिक्ट में पांच कैजुअलिटी हुई है हमारे यहाँ पे, जिसमें 3 मेल्स हैं 2 फीमेल्स हैं।
मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्य में इस साल आई बाढ़ पर तैयार की गई एक अंतरिम रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी है। इस संदर्भ में असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार शर्मा कहते हैं,
के डैमेज के बारे में थोड़ा बहुत दिया है, तो सिचुएशन के बारे में दिया है, कहाँ कहाँ फ्लड हुआ है, मैप दिखाया हमने, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इफेक्ट ज्यादा हुआ है, कितने पॉपुलेशन अफेक्टेड हुए थे, कितनी क्रॉप एरिया प्रभावित, कहीं कहीं पानी अभी भी है, पानी गया नहीं है, वाटर लॉग हो गया है, तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे लगता है 2-3 दिन में सिचुएशन सामान्य हो जाने।
आपदा विभाग का दावा है कि ब्रह्मपुत्र की बात छोड़ दें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों के पानी का स्तर अब घटने लगा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिनों में राज्य में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो जाएगी। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
उधर बिहार में भी बाढ़ से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कोसी समेत राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के लगभग 22 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि राज्य में इस आपदा में अब तक 26 लोग मारे गए हैं।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
भारत प्रशासित कश्मीर में जारी तनाव के बीच अलगाववादियों ने अपनी हड़ताल को 5 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले ये हड़ताल आज खत्म होनी थी, लेकिन अलगाववादी नेताओं ने लोगों से अगले 6 दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने को कहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई है। दूसरी तरफ सेना ने दावा किया है कि उसने घाटी के नवगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया है और इस दौरान 2 चरमपंथी मारे गए हैं। पूरे ब्यौरे के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बात की श्रीनगर में पत्रकार माजिद जहांगीर से।
ये एक निरंतरण LOC का नवगाम सेक्टर है, श्रीनगर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जो है घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम बनाने का दावा किया है और इस घुसपैठ जो की गई थी तो इसमें 2 चरमपंथी को मारने का भी दावा किया है सेना ने, और साथ ही इस जो एनकाउंटर हुआ इसमें जो है 2 भारतीय सेना के जवान भी मारे गए और 1 जवान जो है घायल हुआ है सेना का। सेना का ये कहना है कि जो 2 घुसपैठी थे इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनसे 2 AK-47 भी रिकवर हुआ है और भी कुछ असलहा उनसे बरामद किया गया है और उस इलाके में अगर ये ऑपरेशन खत्म हो गया है लेकिन उस पूरे इलाके में जो है सेना ने सर्च ऑपरेशन तकरीबन अभी जारी है कि कहीं और भी जो घुसपैठी दूसरी जगहों में वो छुपे हुए नहीं होंगे।
जी, इस बीच अलगाववादियों ने अपनी हड़ताल जो है बढ़ा दी है, हालांकि आज उनकी हड़ताल खत्म होनी थी लेकिन इसे और कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
बिल्कुल, आज 31 तक अलगाववादियों का सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज और JKLF के जो चीफ है यासीन मलिक, इनका एक ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहा है 9 जुलाई से, जब से बुरहान वानी की जो एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जो मुजाहिदीन का कमांडर था, इनका ज्वाइंट कैलेंडर जिसको हम कह सकते हैं हड़ताल के हवाले से और जो प्रोटेस्ट का उनका कैलेंडर है, तो 31 को ये खत्म होना था और उन्होंने आज ही नया कैलेंडर जारी किया जो, और इन्होंने अपनी हड़ताल फॉल अब 5 अगस्त तक बढ़ा दी और इन 6 दिनों के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम दिए हैं, प्रोटेस्ट करने की लोगों से अपील की है और सरकार के लिए आज की जो कॉल बढ़ा दी गई तो सरकार के लिए और भी चिंताएं इस कॉल से बढ़ गई है और जो है लगातार जो बंदिशें हैं पूरी कश्मीर घाटी में, तकरीबन कश्मीर घाटी के तकरीबन सभी जिलों में कहीं जगहों पे कर्फ्यू लगाया गया है और कहीं पे बंदिशें हैं चलने फिरने पर पाबंदी है और कहीं पे धारा 144 लगाया गया है और आज भी तरह की जो है पूरी कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर कर्फ्यू रहेगा और कुछ पर चलने फिरने पर पाबंदी रहेंगी जिसको ये बंदिशें कहते हैं और वो बरकरार रहेंगी।
ये थे श्रीनगर से माजिद जहांगीर। पिछले दिनों संसद में पास किए गए नए बाल मजदूरी कानून की कड़ी आलोचना हो रही है। नए संशोधन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक उद्योग में काम करने की इजाजत है और साथ ही बच्चे खेल और मनोरंजन आदि के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1,20,00,000 बाल मजदूर हैं, लेकिन दूसरे आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 6 करोड़ के आसपास है। सरकार का कहना है कि नए कानून से लाखों परिवारों की मदद होगी जो अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर हैं, लेकिन बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने इस तर्क की कड़ी निंदा की है। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता शालू यादव की रिपोर्ट।
मैं दिल्ली की करावन नगर बस्ती में हूँ, जहाँ एक गली से गुजरते हुए स्कूल के बच्चों की गूंज सुनाई पड़ती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर कुछ गोदाम है जहाँ बादाम छीलने का काम चल रहा है। एक गोदाम का दरवाजा आधा खुला है, जहाँ से मैं महिलाओं और नाबालिग बच्चों को मिलजुल कर काम करते हुए देख सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसने की कोशिश करती हूँ, मुझे और मेरी टीम को बाहर जाने को कहा जाता है।
हम न्यूज़ से आए, बीबीसी न्यूज़ से।
तो मैंने आपको मना तो कर दिया, अंदर परमिशन नहीं है भाई।
जाहिर है गोदाम का मालिक नहीं चाहता कि अंदर काम कर रहे बाल मजदूरों के बारे में मीडिया और दुनिया को पता चले। इन बच्चों को वहाँ नहीं बल्कि स्कूल में होना चाहिए। नए बाल मजदूरी कानून के मुताबिक एक प्रावधान ऐसा लाया गया है जिससे बच्चे स्कूल के बाद अपने माता पिता के काम में हाथ बटा सकेंगे, बशर्ते वो काम खतरनाक ना हो। और ये प्रावधान कुछ लोगों को बेहद रास आया है, जैसे कि एक गोदाम के मालिक राजेंद्र बहुत खुश हैं।
ऐसा है कि पहले 18 से ऊपर की जो लेबर है वो हमें रखनी पड़ती थी, लेकिन जो ये रूल पास होने से एक तो हमें लेबर ज़्यादा मिलेगी और हमारे जो पैसे हैं उनमें भी बचत होगी और काम के भी थोड़ा सा अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। अब जो एक लेबर है मेरे पास 300 रुपये लेती है, बच्चा तो सो ही लेगा ना, हम तो बच्चों को सो ही देंगे, 50 देंगे, 80 देंगे, 90 देंगे, हमारे पैसे की बचत नहीं होगी। और जो काम एक आदमी करता है वो 3 बच्चे हो जाएंगे हमारे पास।
और यही वो सोच है जिसने कुछ तबकों में चिंता पैदा कर दी है। ब्रितानी संस्था सेव द चिल्ड्रन से जुड़ी विदिशा पिल्लई का कहना है कि नया प्रावधान बच्चों को स्कूल से दूर करेगा और मजदूरी की ओर खींचेगा।
I think we really didn't need a law to legalize this. We are all aware that yes, this is happening.
मुझे लगता है कि हमें बच्चों की मजदूरी को वैधता देने के लिए एक नए कानून की जरूरत नहीं थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। कानून में नया प्रावधान डालने से सरकार ने उत्पादकों को ये हक दे दिया है कि वे काम को अपनी फैक्ट्रियों में न रखकर गरीबों के घरों में धकेल दें, ताकि वो ये कह सकें कि बाल मजदूर को नौकरी देने वाला काम पारिवारिक है और इसलिए वैध है। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों को एक खंडहर जैसे कमरे में बंद रखा जाता है, जहाँ रोशनी के अभाव में वो बुनकरी या मोती लगाने का काम करते हैं, जिससे उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, और फिर 14-14 घंटों तक वही काम झुककर करना उनके लिए कमर तोड़ साबित होता है।
लेकिन सरकार का कहना है कि ये कानून बनाते समय उन्हें बच्चों के हित के साथ साथ भारत की वर्तमान हालत के बारे में भी सोचना पड़ा, क्योंकि करोड़ों गरीब लोग अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर हैं।
ये जो कानून पास हुआ है, मैं उसके साथ मैं सहमत हूँ।
गुरचरण दास ने भारतीय अर्थशास्त्र पर बहुत सी किताबें लिखी हैं और उनका कहना है कि आर्थिक बढ़त को भी प्राथमिकता देनी होगी।
बाकी देशों में, चीन में और देखिए ईस्ट एशिया में और वेस्ट में बाल मजदूरी एक किस्म की उसे ख़त्म हो गई है। अब ख़त्म हो गई है क्योंकि विकास की वजह से ख़त्म हो गई है। ये जो समझते हैं कि कानून बना दो उसके हम सब हल हो जाएगा, ये ठीक बात नहीं है। चाइल्ड लेबर हटाना, बाल मजदूरी हटाना, उसका जवाब है विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और उससे नौकरियां आएंगी और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी।
भारत में बाल मजदूर हर नुक्कड़, हर गली में दिख जाते हैं,
150 रुपए में पूरा।
जहां कुछ ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचते हैं तो कुछ घरों या होटलों में काम करते हैं, और फिर कुछ ऐसे हैं जो दिखाई ही नहीं देते, कारखानों और खदानों में या खेत खलिहानों में। नए कानून से बाल मजदूरी रुकेगी या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। उम्मीद ये है कि कानून इस प्रथा को नियंत्रित करेगा, लेकिन डर ये भी कि इससे बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलेगा। शालू यादव, बीबीसी दिल्ली।
और कार्यक्रम में अब समय ये जानने का कि आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। वात्सल्य राय हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं। जी
जी अशोक जी, AN-32
भारतीय वायुसेना का जो मालवाहक विमान है करीब एक हफ्ते से लापता हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भास्कर ने एक लीड स्टोरी अपनी दी है और ये बताया है कि गिरने के पहले, मतलब लापता होने के पहले उस विमान में क्या कुछ हुआ था। ये स्टोरी को उन्होंने बताया है कि वो खौफनाक 26 मिनट उस दौरान जब उनका ATC से संपर्क टूटा, इसके बारे में जानकारी दी है। इस विमान के बारे में लगातार अपडेट रक्षा मंत्री भी करते रहे हैं, लेकिन मैं एक जिक्र करना चाहूँगा रक्षा मंत्री के बयान का जो उन्होंने कल पूना में दिया। एक कार्यक्रम में वो शरीक थे और इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को दिया है और ये रक्षा मंत्री के हवाले से बताया है कि देश के खिलाफ बोलने वाले किसी भी शख्स को उसी तरह सबक सिखाया जाना चाहिए जैसे एक अभिनेता और एक कंपनी को सिखाया गया था। अखबार के मुताबिक परिकर ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा आमिर खान की तरफ था।
अच्छा,
वो असहिष्णुता का जो बहस छिड़ी थी उस मुद्दे पर जो आमिर खान ने बयान दिया
था, और एक विज्ञापन भी छोड़ना पड़ा था आमिर खान
जी, एक कंपनी को छोड़ना पड़ा था, वो ब्रांड एम्बेसडर थे उसके। इसके अलावा सऊदी अरब में जो भारतीयों के फंसने की खबर है जिसे आपने लीड खबर बनाया था, वो भी ज़्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने उसको लीड खबर बनाया है, बाकी अखबारों ने भी उसको प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर कहती है कि केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा जातियां जो हैं उनका नेट बढ़ाने के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए सालाना आय की सीमा को 6 लाख से 8 लाख करने पर विचार कर रही है। इस तरह का प्रस्ताव तैयार हो गया है। अच्छा। और अखबार का कहना है कि इसका मकसद यूपी इलेक्शन में इन जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का है,
फिर वोटों की राजनीति
जी। और इसी से जुड़ी एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने दलित सांसद हैं उनका ये मानना है कि एक दलित नेता को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर यूपी में पेश किया जाए तो पार्टी को इसका फायदा मिलेगा,
यानी मायावती की काट
जी। और हाल फिलहाल जो इन मुद्दों पर विवाद हुए हैं वो विवाद भी दूर हो सकते हैं, इसको लेकर अखबार का मानना है। और इसी तरह गोरक्षा मामले को लेकर भी सख्ती दिखाने की सरकार से मांग की है दलित सांसदों ने।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए वात्सल्य राय। और अब चलते हैं खेलों की दुनिया की तरफ। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका में शुरू हुए दूसरे टेस्ट के पहले दिन कल मेजबान टीम पर दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पहली पारी 196 रनों पर समेट दी। वहीं भारतीय बल्लेबाजों ने दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 126 रन जोड़ लिए हैं। इसमें लोकेश राहुल के 75 नाबाद रन शामिल हैं। इससे पहले अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाते हुए आर अश्विन ने 52 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इसके अलावा खेलों की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है सुनते हैं आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत के पहलवान नरसिंह यादव रियो जा पाएंगे या नहीं, कल सबकी नजरें इसी बात पर लगी थी, लेकिन अब इसका पता कल 4 बजे चलेगा जब नाडा अपना फैसला सुनाएगी। कल दिन से शुरू हुई सुनवाई देर रात तक चलती रही, अब देखना है कि नाडा किस तरह का फैसला सुनाती है। उधर श्रीलंका ने अपनी ही जमीन पर शानदार प्रदर्शन करते हुए पल्लेकल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 106 रनों से करारी मात दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 268 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी दूसरी पारी केवल 161 रनों पर ढेर हो गई। केवल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ही श्रीलंका के स्पिनर रंगना हैराथ और लक्षण संदाकन का कुछ हद तक सामना कर सके। स्टीव स्मिथ ने 125 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन बनाए। बाकी बल्लेबाजों ने तो जैसे हथियार ही डाल दिए और केवल पिच पर जमने की कोशिश करते रहे। पीटर नेविल ने 115 गेंदों पर 9 और स्टीव ओकीफ ने 98 गेंदों पर 4 रन बनाए। ऐसे में बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाती। श्रीलंका के रंगना हैराथ ने 54 रन देकर 5 और लक्षण संदाकन ने 49 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही श्रीलंका ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं रूस की 8 सदस्यीय वेटलिफ्टिंग टीम को रियो ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस समेत अब तक 117 रूसी खिलाड़ी प्रतिबंधित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अनुसार रूसी खिलाड़ियों ने कई बार वेटलिफ्टिंग की प्रतिष्ठा और उसके स्तर को धक्का पहुंचाया, इसलिए खेल का दर्जा कायम रखने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया।
और कार्यक्रम के समापन से पहले अब मुख्य समाचार।
BBC समाचार। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सऊदी अरब के जेद्दा शहर में फंसे भारतीयों के मामले को सुलझाने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह वहां जाएंगे। रूस के मुताबिक सीरिया के संघर्षग्रस्त अलेपो शहर से 169 आम लोगों को बाहर निकाला गया है, हालांकि अब भी वहां 300,000 लोग फंसे हुए हैं। अमरीका के टेक्सस प्रांत में एक हॉट एयर बैलून में आग लगने की वजह से इसमें सवार सभी 16 लोगों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत में बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। ठीक एक घंटे बाद मिलेंगे विश्व भारती कार्यक्रम में। अशोक कुमार को अनुमति दें। नमस्कार।